SBS हिंदी के सभी श्रोताओं को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और बिहू की मुबारकबाद के साथ नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। आज तड़के जब ज्यादातर उत्तर भारतीय रजाइयों और कंबलों में लिपटे हुए थे, तब उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ठंडे पानी में डुबकी लगाकर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम महाकुंभ की शुरुआत की। पहले 2 दिनों में ही 4 करोड़ लोगों के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिनके लिए 41 घाट बनाए गए हैं और 1,60,000 से अधिक टेंट लगाए गए हैं। अमेरिका के चयनित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रतिनिधित्व का मसला साफ हो गया है। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान वे ट्रंप प्रशासन के नए प्रतिनिधियों से भी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। एक ओर जहां विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता न दिए जाने पर चुटकी ले रहा है, वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा, मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप एक दूसरे के बेहद करीब हैं। मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूं जब वे सीधे तौर पर मिलेंगे। यह किसी भीड़ भरे शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण के बारे में नहीं है, यह हमारे बीच होने वाली आमने सामने की बातचीत के बारे में है, जो हमारे संबंधों के अगले अध्याय को परिभाषित करेगी। श्री गारसेट्टी के अनुसार सन 2025 में दोनों नेता पहले वॉशिंगटन DC में मिलेंगे और फिर दोबारा भारत द्वारा आयोजित की जा रही क्वाड शिखर वार्ता में। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने न्यूनतम स्तर 86.20 रुपये पर पहुंच गया है। भारत का रुपया दबाव में कई कारणों से आ रहा है, जिनमें कुछ हैं विदेशी निवेशकों की वापसी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों की नकारात्मक भावना, आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति पद और संभावित व्यापार प्रतिबंध की अनिश्चितता, निर्यात का कम होना और आर्थिक विकास में कमी। विपक्षी इंडिया गठबंधन दलों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा गठबंधन की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जाने के बाद अब गठबंधन के घटक दल शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे ने मुंबई और नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने इस निर्णय की जानकारी दी।
क्यों नहीं लड़ेंगे? लोकसभा में हम इंडिया ब्लॉक बनाया था, महाराष्ट्र में विधानसभा के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बनाई थी। आघाड़ी में बहुत से कार्यकर्ताओं का हम उनकी जो इच्छा रहती है लड़ने की पूरी नहीं करते, तो लोकल बॉडीज चाहे महानगर पालिका हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, वहाँ कार्यकर्ताओं को लड़ने का मौका देना चाहिए। हम नागपुर में भी अपने बल पर लड़ेंगे और मुंबई में भी लड़ेंगे, सभी जगह पर लड़ेंगे।
श्री अब्दुल्ला की तरह उन्होंने भी सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन की कमान ठीक तरह से न संभालने का आरोप लगाया।
इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वेनर नहीं घोषित कर सके।
इंडिया गठबंधन में संकट का अंदाजा दिल्ली विधानसभा चुनावों से भी लग सकता है, जहां तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन आम आदमी पार्टी को देना तय किया है और कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली की समस्याओं के लिए जिम्मेवार ठहरा रही है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने राज्यपाल RN रवि को हटाने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी है, जिसमें राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को RN रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में दावा किया गया है कि श्री रवि ने राज्यपाल के दायित्वों का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ता सी आर जया सुकिन ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए। राज्यपाल ने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने को कहा था, जबकि ऐसा आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं है। याचिका के अनुसार राष्ट्रगान के बजाय तमिलनाडु राज्य का गान तमिल थाई वाजथू, तमिल माँ का आह्वान गाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने श्री रवि के व्यवहार को बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन बताया था। रविवार को राज्यपाल ने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर श्री स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान और संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर जोर देना बेतुका और बचकाना है। हितों और विचारधाराओं के गठबंधन के सच्चे इरादों को धोखा देने के लिए धन्यवाद, जिसके वे नेता हैं जो भारत को एक राष्ट्र और उसके संविधान के रूप में स्वीकार और सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा अहंकार अच्छा नहीं है। कृपया यह न भूलें कि भारत सर्वोच्च माता है और संविधान उसके बच्चों के लिए सर्वोच्च आस्था है। वे इस तरह के बेशर्म अपमान को पसंद या बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्री रवि 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए थे। तब से लेकर अब तक कई मुद्दों पर राज्य की एम के स्टालिन सरकार और उनके बीच विवाद हो चुके हैं। पिछले साल 26 नवंबर से अनशन कर रहे वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के दौरान प्रदर्शनकारी एसकेएम गैर राजनीतिक ने अगले 48 घंटों में एकता बैठक आयोजित करने का आग्रह किया है। इस आग्रह को देखते हुए कई किसान यूनियनें एक झंडे तले आ केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए एकमत होती दिख रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने इस बारे में बात की।
आज सारे देश नू खास तौर ते पंजाब नू सर जगजीत सिंह डल्लेवाल दी सेहत दी बहुत ही चिंता है। एटा वड्डा कदम उन्होंने चुके है। हर पंजाबी उन्हां दे इक इक साह नाल जुड़िया होया। असी कल मोगा रैली विच लखां दे कट विच जिहड़ा लोकां ने सानू फतवा दिता उहदे मुताबक अपने इन्हां भरावां नू कहण आए आ। विखरेवें रोसे वह सब एक पासे अज स्थिति उन्हां दी गल करन दी नहीं। असी इन्हां नू चिट्ठी देण आए आ एक भी आओ आप बैठ के सारा कुछ तय कर लईए और कट्ठे हो के इस अंदोलन नू लड़िए और इहदे च जित प्राप्त करिए। वाहिगुरू मेहर करू।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बेशक एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों राजनीतिक दलों ने किसानों का साथ देने की ठान ली है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने आमरण अनशन पर बैठे श्री दल्लेवाल से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से जिद छोड़ किसानों को दिया अपना वचन निभाने को कहा। इस बीच शंभू बॉर्डर पर 55 साल के किसान रेशम सिंह ने सल्फास जहर खाकर जान दे दी, जिसके कारण किसानों में क्षोभ है। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।